अब जो कोशिश हम कर सकते हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन अल्लाह से दुआएं भी मांगनी है। कुरान पाक में कुछ आयतें और कुछ दुआएं हैं जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये इशारे मिलते हैं कि अच्छी मौत के लिए दुआएं मांगें। मैं नंबर भी बोलूंगी और दुआएं आयतें हम दुआ के तौर पे मिलके भी याद कर लेते हैं। शायद हमारी इस वक्त की ये मांगी हुई दुआ हमारे खात्मा बिल खैर के रास्ते में आ जाए इंशाल्लाह। पहली दुआ है सूरत यूसुफ की आयत नंबर 101 है, आइए मेरे साथ दोहराइएगा। फातिर समावाति वल अर्दी अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफनी मुस्लिमम वालहिकनी बिस्सालिहीन। इसका तर्जमा क्या है कि आसमानों जमीन को पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा सरपरस्त है, मुझे मुसलमान होने की हालत में फौत कर और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। किसकी दुआ है ये? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। और इतनी खूबसूरत ये दुआ है कि सब कुछ मिल गया, बिछड़े हुए भाई मिल गए, बाप मिल गया, मिस्र की बादशाहत मिल गई, गलबा मिल गया, कहर दूर हो गया, दीन दुनिया की इज्जत मिल गई, खुद पे लगा हुआ इल्जाम दूर हो गया, तो अब क्या मांगते हैं? तवफनी मुस्लिमीन। क्या पता चला कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत भी इंसान को मिल जाए तो उसको गम ये लगना चाहिए कि मेरी मौत अच्छी हो। और आपको पता है कि नबी सल्लम के सहाबा जो थे ना, वो इस गम में जीते थे। एक सहाबी थे, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा हुआ था, लेकिन हर वक्त बेचैन, परेशान, दुखी दुखी थे। लेकिन अल्लाह का हुक्म देखिए कि किसी जंग में उनको तीर लगे, जख्मी हुए, बिल्कुल जिस्म चूर चूर है और बिस्तरे मार्ग पे हैं और चेहरे पे एक खुशी और सुकून है, इत्मीनान। किसी ने कहा कि ये आपका मामला तो उलट ही देखा है, जब नेमतें थी तो बेचैन थे और आज जिस्म जख्मी है तो और आप मुतमईन है, इसकी वजह क्या है? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? कहने लगे, भाई जिंदगी भर नेकियां करता था, नेमते भी थी नेकियां भी थी। बहुत सारे ऐसे लोग खुशकिस्मत होते हैं, अल्लाह ने दुनिया भी दी हुई है, दीन भी बहुत है माशाल्लाह उनके। कहा लेकिन उस वक्त ये चीज बेचैन करती थी कि मौत के वक्त पे क्या कर रहा हूँ, मेरी मौत बुरी ना आ जाए। और आज मेरे चेहरे का इत्मीनान किस बात का है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा पे मर रहा हूँ। ये है वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। हजरत उमर फारूक क्यों कहा करते थे कि मेरा एक कदम जन्नत में और एक जन्नत से बाहर हो, मैं तब भी इत्मीनान से ये नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूँ जब तक मेरा दूसरा कदम जन्नत में ना आए। और अबू हुरैरा का वाक्य तो आपने सिर्फ मेरे से शायद 20 बार सुन लिया होगा अगर आप क्लासेस सुनते हैं, कि किसी ने एक बार आके उनसे कहा, अबू हुरैरा आपको पता है फलां शख्स ने आपकी बुराई की। बस इतनी बात कोई कह दे तो फिर हमसे सुने हम, वो कहते इधर आओ मैं तुम्हें बताऊं जरा अबू हुरैरा क्या है और उसके माँ कैसी थी और बाप कैसा है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। अबू हुरैरा ने कहा, भाई इधर आओ, मुझे अबू हुरैरा का तो हर वक्त तीन बातों का गम है। पहला गम मुझे क्या है कि मेरी मौत किस हाल में आएगी, शायद मैं कोई गलत काम करूं तो मौत आ जाए। मैं इस गम में परेशान रहता हूं कि अबू हुरैरा तुझे मौत कैसे आनी है। सच बताएं, कहने वाला और सुनने वाले भी सोचें, कब हकीकी मानों में ये गम दिल को लगा, चाहे चंद घड़ियों के लिए लगाओ। गम तो हमें भी बड़े हैं, कहीं बच्चों के तो कहीं जान के तो माल के तो रिश्तों के तो घरों के तो बाहर के तो अंदर के। ये गम बंदे को दुनिया की चीजें भुला दे कि मेरी मौत कैसे आएगी। और कहते हैं दूसरा गम ये है कि जब नामे अमाल बटेंगे तो मेरा नामे अमाल दाएं में जाएगा कि बाएं में, ये गम पड़ा हुआ है। और तीसरा गम मेरा क्या है कि जब पुल सरात से गुजरूंगा तो क्या आफियत से गुजर जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरत मरियम में आता है, वाइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को उसके ऊपर से गुजरना ही पड़ेगा। कहते हैं कि अगर अबू हुरैरा इन तीन मुकामात पर खैर और आफियत से गुजर गया तो उसको कोई परवाह नहीं कि लोग उसको अच्छा कहते हैं कि बुरा, जो मर्जी को, हु केयर्स, अल्लाह हमें इतना बेनियाज कर दे। और कहते हैं अगर इसके ऑपोजिट अबू हुरैरा अगर इनमें से एक मुकाम पर रोक दिए गए तो दुनिया के हर बंदे को हक पहुंचता है कि वह अबू हुरैरा की बुराई करे, कि कितना बदबख्त था कि इधर आके फंस गया। तो आप देखिए कि अबू हुरैरा को लोगों की बातों से बेनियाज किस चीज ने किया, कि मेरा खात्मा अच्छा हो। तो अपने दिल में ये तड़प रखी है, आज की सारी नशीस के बाद सिर्फ अगर ये गम लग गया ना कि मेरा खात्मा अच्छा हो, तो आप देखिएगा कि हमारे बहुत सारे काम अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह एक और दुआ है सूरत अल आराफ 126 में, आइए इसको भी मिलके दोहराते हैं। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन। तर्जमा क्या है कि हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे और इस हाल में हमें मौत दे कि हम मुसलमान हों। आपको अंदाज़ा है ये किनकी दुआ है, जिनके दिल की दुनिया अल्लाह ने कितनी जल्दी बदल दी थी। फिरौन के जादूगर, जब हक दिखा तो फिर काब नहीं, अब तो बस मौत आती है तो जहां है बस ये कह दिया कि अल्लाह कहीं हम फिरौन के जुल्मों सितम से घबरा कर मौत के वक्त इस्लाम को ना छोड़ दें। हमने तो कभी इसको सोचा ही नहीं। आप कहते कितनी सख्त नजा की घड़ियां होती हैं कि रिवायत में था कि शैतान जिसने कस्में खाई हुई है इस इंसान को बहकाने की, वो मौत के वक्त भी पानी का प्याला लेके आ जाता है, क्योंकि इंसान को प्यास लगती है तो वो कहता है तुम मुझे सजदा करो तो मैं तुम्हें ये पानी पिला दूंगा। और जो कच्चे ईमान वाले हैं वो पानी पी लेंगे और उसको सजदा कर देंगे। तो ये बड़े मुश्किल मरहले हैं। मैं ये बातें कर रही हूँ तो मेरे जहन में किसी की भी डिलीवरी का जहन में आता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ को खौफ होता है ना, माँ को भी होता है, बेटियों को भी होता है, पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या होगा। जिस तरह मौत दुनिया में आते वक्त जान का खतरा होता है ना, तो पहले से हाथ मुंह फूल रहे होते हैं, तो मौत दुनिया से जाने के वक्त क्या हालात होंगे, इसको आज से सोचना शुरू कर दें। चले आज की इस महफिल को और इस वाक्य को बुनियाद बनाकर हम अपनी मौत का सोचना तो शुरू कर दें कि हमारे साथ ये सब कुछ कब होगा, क्या होगा, मैं कहाँ मरूंगी। आइए थोड़ा सा सोचते हैं, वैसे मैं कहाँ मरूंगी, मेरी मौत अपने मुल्क में आएगी या परदेश में, मैं सफर में जाऊंगी कि हजर में, गर्मियां होंगी कि सर्दियां होंगी। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कभी गर्मियों में मुंह पे चादर भी आ जाए ना, पसीने आते हैं, और वो जो कफन के ऊपर ही कैसे वो छज्जा सा डाल देते हैं उसमें से तो सांस ही बंद हो जाए। मेरी मौत कब आएगी, कितने साल रह गए मेरी मौत के, क्या हम दिन में एक बार भी अपनी मौत को याद करते हैं। हालांकि रिवायत में है कि मौत एक दिन में इंसान को कई बार याद करती है, तो कभी कभी सोचा करें, कुछ नहीं होता इससे, ये कोई बच्चेगोनी नहीं है कि सोचने से मौत आएगी, वो तो आनी है, नहीं भी सोचेंगे तो आ जाएगी। फिर एक और दुआ है सूरत आल इमरान 193 की, आइए पढ़ते हैं। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़ना माल अबरार। इसका तर्जमा है कि हमारे रब बस हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर फरमा और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे। सवाल पैदा होता है नेक लोगों के साथ मौत से क्या होगा, तो आप देखिए कि इंसान अपने साथी से पहचाना जाता है। बड़े लोग कहा करते थे कब्र भी अल्लाह कभी बद के साथ ना दे। आपको पता कि कब्रों में भी अजाब होता है ना, तो नेक का साथ मिलेगा तो इंशाल्लाह कब्र ठंडी रहेगी। फिर इसी तरह एक दुआ सूरत शुरा की आयत नंबर 83 में बड़ी खूबसूरत दुआ है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ, कैसे खूबसूरत ना होगी, आइए दोहराते हैं। रब्बी हबली हुक्मम वल्हिकनी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे रब मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा। तो आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ के तो हर बंदे के दिल में ख्वाहिश आती है कि अल्लाह मेरे साथ भी ये कर। जिंदगी में अगर हिकमत नहीं मिली ना तो बस बेगार काट रहे हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, लोगों को परेशान देखती हूँ, उनको अपनी जिंदगी के मामले ही नहीं डील करने आते। बेटियों को कैसे खुश रखना है, बेटियों के घर कैसे बसाने हैं, बेटों को कैसे, शौहर को कैसे, कोई डील ही नहीं कर पा रहा, किसी को हैंडल ही नहीं करते। कमी हिकमत की है। क्यों कुरान में आता है जिसको हिकमत दी गई फकदूत या खैरन कसीरा, खैर कसीर कहा। तो अल्लाह से हिकमत मांगे, ये मांगने वाली चीज है, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। हिकमत के बगैर जिंदगी बस वो एक बोझ ही है। तो यहाँ हजरत इब्राहिम ने जिंदगी में हिकमत मांगी और मौत नेक लोगों के साथ मांगी। ये तो थी कुरान की दुआएं।